नमस्कार भारत, तारीख 3 जुलाई, दिन सोमवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। कतर संबंध खत्म करने वाले खाड़ी देशों की मांगों का जवाब आज सौंपेगा कुवैत को।
This list of demands made to be rejected. It's not made to be accepted or not made to be.
झारखंड में पीट पीट कर मारे गए मुस्लिम युवक की हत्या के मामले में स्थानीय बीजेपी नेता गिरफ्तार। महिला विश्व कप क्रिकेट में भारत ने हराया पाकिस्तान को।
मैंने पहले भी इंडिया पाकिस्तान मैचेस खेले हैं। ऐसे मैचेस से हम लोग वुमेन्स क्रिकेट को और पॉपुलर कर सकते हैं हर जगह पे, लोगों के मन में भी वुमेन्स क्रिकेट देखने के लिए क्यूरियोसिटी।
लेकिन भारत हारा वेस्टइंडीज से। कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी भी होगा, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। कतर के विदेश मंत्री ने कहा है कि सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों की मांगों का जवाब आज खाड़ी देशों के संकट में मध्यस्थता कर रहे कुवैत के अमीर को सौंप दिया जाएगा। शनिवार को कतर ने सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों की मांगों को खारिज कर दिया था। अरब देशों ने बातचीत के लिए कतर को अल जजीरा न्यूज चैनल बंद करने की शर्त रखी थी। इससे पहले सऊदी अरब, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और बहरीन ने कतर से कूटनीतिक संबंध खत्म कर लिए थे। इन देशों ने कतर पर चरमपंथ का समर्थन करने का आरोप लगाया है। चीन ने अमेरिका पर साउथ चाइना सी में उकसाने वाली कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। इससे पहले खबरें आई थी कि अमेरिका का एक लड़ाकू जहाज विवादित द्वीप के नजदीक पहुंच गया था। इस द्वीप पर चीन अपना दावा पेश करता रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि यूएसएस स्टेंथम नाम का एक जहाज चीन की जल सीमा के भीतर घुस गया था और चीन की संप्रभुता का उल्लंघन किया गया था। और अमरीकी जहाज को चेतावनी देने के लिए चीनी नौसेना ने लड़ाकू विमान और जहाज भेजे हैं। अमेरिका पारासेल द्वीप समूह में स्थित ट्रिटोन द्वीप पर चीन के दावे को खारिज करता है और इसी द्वीप पर ताइवान और वियतनाम भी अपना दावा पेश करते हैं। अब से कुछ देर बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत करने वाले हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क में कल एक आत्मघाती बम धमाके में 19 लोगों की मौत हो गई है। सरकारी न्यूज एजेंसी साना के मुताबिक सीरियाई पुलिस 3 संदिग्ध कारों का पीछा कर रही थी। ये कारें राजधानी दमिश्क में घुसने की कोशिश कर रही थी। पुलिस इनमें से 2 कारों को रोकने में सफल हुई, लेकिन तीसरी कार शहर के पूर्वी हिस्से तहरीर चौराहे पर पहुंच गई और यहां चरमपंथियों ने आत्मघाती बम धमाका किया। एक चश्मदीद अनस ने आंखों देखा हाल बताया। हम धमाकों से उठ गए, वो बहुत जबरदस्त धमाके थे। हमने देखा कि खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं और सब जगह मलबा गिरा हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है, गाड़ियां जल गईं और दुकानें भी जल गई हैं। ये थे इन धमाकों के चश्मदीद अनस के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फ्रांस के एविन्योन में एक मस्जिद के बाहर गोलीबारी में 8 लोग घायल हो गए हैं। किसी की भी हालत गंभीर नहीं बताई जा रही है। इनमें एक 7 साल की लड़की भी शामिल है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक इसके पीछे चरमपंथी हमले की मंशा नहीं दिखती है। अधिकारियों ने स्थानीय मीडिया को बताया है कि इसके पीछे आपसी रंजिश वजह हो सकती है। चश्मदीदों के मुताबिक रेनॉल्ट कार में आए 2 लोगों ने लोगों की भीड़ पर गोलियां चलाई। अभी संदिग्ध हमलावरों की पुलिस तलाश कर रही है। जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में G20 देशों के सालाना सम्मेलन की तैयारी शुरू हो चुकी है। हजारों लोग यहां बड़े औद्योगिक देशों के सम्मेलन में विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। करीब 8,000 लोग वैश्विक व्यापार प्रणाली में बदलाव, गरीबी उन्मूलन और जलवायु परिवर्तन की दिशा में कदम की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हैम्बर्ग में शुक्रवार से G20 देशों का सम्मेलन होने जा रहा है। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि यह सम्मेलन दीर्घस्थायी और समाहित करने वाले विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर केंद्रित होगा। हैम्बर्ग में कृत्रिम झील में नावों पर सवार प्रदर्शनकारियों में एक माल्टे का कहना था। हम ये कहने आए हैं कि दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक G20 देश जो कि सबसे ज्यादा गैस उत्सर्जन करते हैं, वो कम करने के लिए कोई समाधान नहीं करते हैं और इसका खामियाजा विश्व के दक्षिणी हिस्से को भुगतना पड़ता है। ये थे माल्टे के शब्द। बीबीसी समाचार।
बीबीसी बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। जैसा कि समाचारों में आपने सुना, खाड़ी देश इन दिनों कई दशकों के सबसे गहरे संकट से गुजर रहे हैं और जल्द ही इसके सुलझने के आसार नजर नहीं आ रहे। कतर से संबंध खत्म करने वाले सऊदी अरब समेत कई खाड़ी देशों ने पिछले महीने कुछ मांगे रखी थी और इन्हें मानने के लिए कतर को 10 दिन का वक्त दिया था। संकट में मध्यस्थता कर रहे कुवैत को आज कतर अपना जवाब सौंपने जा रहा है। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात समेत कतर से संबंध खत्म करने वाले देश कतर के जवाब पर बुधवार को चर्चा करेंगे। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए हरिता कांडपाल से।
राजनयिक संकट में घिरे कतर और उसके पड़ोसी देशों के बीच मध्यस्थता की कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही हैं। खाड़ी देशों में अलग थलग पड़े कतर ने सऊदी अरब और अन्य अरब देशों की मांगे खारिज कर दी हैं, लेकिन कतर ने ये जरूर कहा है कि वो सही परिस्थितियों में चर्चा के लिए तैयार है। पिछले महीने कतर को आतंकवाद को पोषण देने वाला देश बताते हुए कुछ खाड़ी देशों ने उसके साथ अपने राजनयिक संबंध खत्म कर उस पर प्रतिबंध लगा दिए थे। कतर इन आरोपों से इनकार करता रहा है, लेकिन सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने कतर को अपनी मांगों की सूची सौंपी थी और इस पर अमल करने के लिए 10 दिन का वक्त दिया था। इन देशों ने कतर को ईरान से रिश्ते तोड़ने और अल जजीरा न्यूज चैनल को बंद करने को कहा था। हालांकि इस अल्टीमेटम को खत्म होने में अभी 2 दिन बाकी है, लेकिन कतर के विदेश मंत्री का कहना है कि किसी को भी अल्टीमेटम देने का अधिकार नहीं है। कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी ने रोम में पत्रकारों से बातचीत में कहा, हम मानते हैं कि दुनिया अंतर्राष्ट्रीय कानून से चलती है और विश्व के कायदे के मुताबिक बड़े देश छोटे देशों पर धौंस नहीं जमा सकते, वो अल्टीमेटम नहीं दे सकते। किसी को भी ये हक नहीं है कि वो किसी संप्रभु देश को अल्टीमेटम दे। मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी के शब्द। खाड़ी देशों के संकट में मध्यस्थता कर रहे कुवैत ने कतर को जो सूची सौंपी थी उसमें मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ सभी तरह के संबंध तोड़ने, अल जजीरा, RBI 21 और मिडिल ईस्ट आई न्यूज चैनल को आर्थिक मदद बंद करने को कहा गया था। इसके अलावा सऊदी अरब और अन्य देशों में विपक्षी पार्टियों को दी गई आर्थिक मदद से जुड़ी विस्तृत जानकारी देने की भी मांग की गई थी। कतर के विदेश मंत्री का कहना है कि जो मांगे इन देशों ने रखी हैं, उसमें बातचीत की कोई गुंजाइश है ही नहीं।
This list of demands made to be rejected.
मांगों की जो सूची इन देशों ने बनाई है वो खारिज किए जाने के लिए ही थी। ये सूची इसलिए नहीं बनाई गई कि उसे स्वीकार किया जाए या उस पर कोई बातचीत की जाए। कतर उसे पूरी तरह से खारिज नहीं करना चाहता, बल्कि हम ये कहना चाहते हैं कि सही परिस्थितियों में हम बातचीत के लिए तैयार हैं। ये थे कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी के शब्द। कतर से राजनयिक संबंध खत्म करने वाले देशों में सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, यमन और लीबिया शामिल हैं। खाड़ी देशों के इस संकट को सुलझाने की कोशिशें जारी हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई बार इस संकट के कूटनीतिक हल पर जोर दे चुके हैं। इस सिलसिले में उन्होंने कतर के अमीर और बहरीन के सुल्तान से फोन पर कई बार बातचीत भी की है।
तो जैसा कि आपने सुना, कतर संबंध खत्म करने वाले खाड़ी देशों की मांगों का आज जवाब सौंपेगा कुवैत को, जो कि मध्यस्थता कर रहा है।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 6155, 7995, 9915 और 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौरक्षा के नाम पर हिंसा की आलोचना कर रहे थे, उसी दिन झारखंड में मांस ले जा रहे मुस्लिम युवक अलीमुद्दीन को पीट पीट कर मारा गया और इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गई। इस मामले में अब एक स्थानीय बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड सरकार मॉब लिंचिंग के कई मामलों की वजह से पहले से ही निशाने पर है। रांची से हमारे सहयोगी रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
यह आवाज इस बात की मुनादी है कि झारखंड के कथित गौरक्षकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का कोई असर नहीं है। क्योंकि 29 जून को जिस वक्त प्रधानमंत्री साबरमती में गौरक्षा के नाम पर हिंसा की आलोचना कर रहे थे, लगभग उसी वक्त रामगढ़ में मौजूद करीब 100 लोगों की भीड़ अलीमुद्दीन अंसारी को सरेआम पीट रही थी। लोगों को शक था कि अलीमुद्दीन अपनी वैन में बीफ ले जा रहे हैं। भीड़ ने उन्हें इतना पीटा कि कुछ ही घंटे बाद अलीमुद्दीन अंसारी की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में राज्य में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी के एक नेता नित्यानंद महतो को गिरफ्तार किया है। उन पर अलीमुद्दीन को वैन से खींचकर उतारने और फिर उनकी हत्या में शामिल होने के आरोप हैं। रामगढ़ के एसपी किशोर कौशल ने बताया,
इसके अलावा भी कई लोगों की पहचान की गई है, उनके खिलाफ वारंट लेने की और आगे कानूनी कार्रवाई करने की।
नित्यानंद महतो भारतीय जनता पार्टी की रामगढ़ जिला इकाई के मीडिया प्रभारी हैं। उनकी गिरफ्तारी भाजपा के जिलाध्यक्ष पप्पू बनर्जी के आवास के समीप की गई। इसके बाद विपक्ष ने रघुवर दास की सरकार पर गौरक्षकों को संरक्षण देने के आरोप लगाए हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि इस मामले की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से कराई जानी चाहिए। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा,
जितना भी मॉब लिंचिंग हो चाहे क्रिमिनल टेंशन हो, ये बहुत प्लान वे में बीजेपी और जो सोकॉल्ड हिंदू जागरण मंच जो है आरएसएस, इनका एक तरीका है गवर्नमेंट के पेट्रोनेज में ये सब काम हो रही है।
वहीं भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। भाजपा प्रवक्ता प्रवीण प्रभाकर ने कहा कि सरकार किसी को भी पार्टी की आड़ में अपराध करने की इजाजत नहीं दे सकती।
हम लोग किसी को काम अपने हाथ में देने की इजाजत नहीं देंगे, चाहे वो हमारा ही कार्यकर्ता क्यों नहीं।
सियासत की इन बातों को छोड़ भी दें तो झारखंड में मौजूदा हालात बेहतर नहीं कहे जा सकते। पिछले कुछ दिनों के दौरान भीड़ ने विभिन्न मामलों में कम 12 लोगों को पीट पीट कर मार डाला। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हालांकि कुछ अफसरों पर कार्रवाई कर एक संदेश देना चाहा, लेकिन भीड़ पर उनकी हिदायतों का कोई असर नहीं है। रवि प्रकाश, बीबीसी रांची।
झारखंड में पीट पीट कर मारे गए मुस्लिम युवक की हत्या के मामले में स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश प्रशासन को अपने ही एक मंत्री की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और उनके गृह नगर के जिलाधिकारी के बीच निजी विवाद इस कदर बढ़ गए हैं कि मंत्री ने इस्तीफा देने और अनशन शुरू करने की धमकी दे दी है। यही नहीं, मंत्री का कहना है कि वो सिर्फ एक दिन और इंतजार करेंगे, वरना डीएम कार्यालय के सामने ही अनशन शुरू कर देंगे। क्या है इसके पीछे की वजह और मंत्री की इस जिद के बावजूद जिलाधिकारी को क्यों नहीं हटाया जा रहा, सुनिए समीर आत्मन मिश्र की इस रिपोर्ट में।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी रविवार को राज्य में अपनी एक सहयोगी पार्टी अपना दल एस की वाराणसी में होने वाली रैली में शिरकत करने पहुंचे थे। वहीं कुछ ही दूरी पर एक अन्य सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता और मंत्री अपने ही जिले के डीएम के खिलाफ धरने पर बैठने की तैयारी कर रहे थे। मंत्री ओम प्रकाश राजभर और गाजीपुर के डीएम के बीच चल रहा विवाद इस समय चर्चा में है और ओम प्रकाश राजभर ने धमकी दी है कि यदि कल तक उनकी बातें न मानी गईं तो वे सरकार से इस्तीफा दे देंगे और जिलाधिकारी आवास पर साथियों के साथ धरने पर बैठ जाएंगे। बीबीसी से बातचीत में ओम प्रकाश राजभर ने कहा,
मैं तो सुनील बंसल जी से 25 तारीख को मिलकर अवगत करा दिया, तो मुख्यमंत्री जी से समय मिला, उनसे मिलकर के कोई अवगत करा दिया, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सात लोग वो कहे कि भाई जब आपकी भी बात नहीं सुनी जा रही है तो या तो आप आओ धरना, हम लोग देंगे लोकतंत्र में जो सिस्टम है, नहीं तो फिर हम लोग आपका साथ छोड़ देंगे, अपने मन से काम करेंगे और जिनकी बदौलत हम यहाँ तक आए हैं, अब उनकी भावना के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते ना। 4 तारीख पर अगर डीएम को नहीं हटा देंगे तो फिर मैं काम को इस्तीफा दे दूंगा। हम मुख्यालय से धरना देने की तैयारी पूरी कर ली है।
बताया जा रहा है कि मंत्री और जिलाधिकारी के बीच तल्खी की शुरुआत किसी छोटी सी घटना से हुई। ओम प्रकाश राजभर के प्रतिनिधि और उनकी पार्टी के कुछ नेताओं ने कुछ दिन पहले जमीन की पैमाइश करने गए अधिकारियों और कर्मचारियों से कथित तौर पर मारपीट की थी। इस मामले में जिलाधिकारी के निर्देश पर मंत्री के प्रतिनिधि और दूसरे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया था। मंत्री के कई बार कहने के बावजूद डीएम इस मुकदमे को वापस लेने पर तैयार नहीं हुए। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि इस बारे में उन्होंने बीजेपी के पार्टी फोरम से लेकर मुख्यमंत्री योगी तक शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं बीजेपी का कहना है कि उन्हें अपनी बात को सार्वजनिक तौर पर करने की बजाय सरकार के भीतर करनी चाहिए। पार्टी प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव कहते हैं,
मुझे ऐसा लगता है कि एक सम्मानित मंत्री होने के नाते पहले उनको अपनी बात को जो पार्टी का फोरम है वो उसपे और जो सरकार में जिम्मेदार लोग हैं उनसे अपनी बात करने, उनको भी अपनी बात को पब्लिक की बजाय और मीडिया में जाने की बजाय उनको अपनी बात को उचित फोरम पे रखें।
इस बारे में डीएम संजय कुमार खत्री से संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। जानकारों का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर के सरकार छोड़ने या फिर गठबंधन तोड़ने से सरकार पर फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पिछड़ों के कथित उत्पीड़न का जो आरोप राजभर सरकार पर लगा रहे हैं उसका राजनीतिक नुकसान बीजेपी को अवश्य हो सकता है। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
समीर आत्मज मिश्र अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि क्यों एक मंत्री नाराज़ है अपने ही इलाके के जिलाधिकारी से और क्यों वो अनशन की धमकी दे रहे हैं। कार्यक्रम में अब हम अखबारों के का जिक्र करेंगे। हरिता, अखबार पलट चुके हैं, अखबार की सबसे बड़ी खबरें क्या हैं आज?
आज अखबार की सबसे बड़ी खबरों में भारत और चीन का विवाद, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और उन्होंने जो राष्ट्रपति के बारे में कहा है,
पिता समान है प्रणवता,
उन्होंने कहा, ये सारी खबरें छाई हुई हैं। और जीएसटी जो कि 1 जुलाई को लागू हुआ और उसकी रिपोर्टें जो आना शुरू हुई हैं कि क्या क्या हो रहा है उसे लेकर, नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि जीएसटी से अटक ना जाए बिजनेस और केंद्र सरकार ने इसके लिए राहत दी है। सोशल मीडिया पर जो है व्यापारियों के और लोगों के भ्रम को तोड़ने की कोशिश की है, रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अढ़िया ने ट्वीट कर हकीकत सामने रखी है। इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है कि भारत के सबसे बड़े कर सुधार की जो शुरुआती रिपोर्ट है वो बता रही है कि असमंजस कोई बहुत बड़ा नहीं है और सरकार जो है व्यापारियों और ग्राहकों पर नज़र रखे हुई और स्थिति अब तक जो है वो काबू में नजर आ रही है, लोग उससे एडजस्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ी दिलचस्प खबर दी है कि जीएसटी लागू होने के बाद जो टैक्स विशेषज्ञ थे और जो सीए हैं उन लोगों ने अपनी फीस में जो है करीब 30% बढ़ोतरी कर दी है, तो मतलब एक तबका जो है
फीस
वो
होगी उनको जरूर के लिए।
जी बिल्कुल, फायदा उठाया जा रहा है। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की मैं जो हेडलाइन देख रही हूँ वो ये है कि भारत चीन और भूटान का जो ये पूरा एक जो सीमा का जो ये हिस्सा है जहाँ पर ये मिलते हैं तीनों और जो जिसको लेकर आजकल विवाद चल रहा है, ये 62 के से लेकर अब तक जो है वो सबसे लंबा विवाद है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की पहली।
पंजाब केसरी ने भी शीर्षक यही लगाया, भारत चीन सीमा पर टकराव बड़ा, 62 के बाद सबसे बड़ा तनाव और सिक्किम सीमा पर भारत और चीन ने भेजे और सैनिक।
जी, दैनिक भास्कर की भी यही पहली हेडलाइन है। इसके अलावा बात करें गैंगरी पीड़िता जो कि आज उन पर खबर छाई हुई है सारे अखबारों में, हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि जो उत्तर प्रदेश में एक गैंगरेप पीड़िता है उस पर 5वीं बार तेजाब फेंका गया है, ये वही महिला है जिससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद अस्पताल में मिलने पहुंचे थे और इस पर इसे कथित तौर पर आश्वासन दिया था रक्षा का, कथित तौर पर उन्हें ट्रेन में एसिड पिलाया गया था इस महिला को और ये 5वीं बार बताया जा रहा है कि उनके पर तेजाब फेंका गया है। एक हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के पहले पन्ने पर तस्वीर देख रही हूँ, लश्कर के चरमपंथी बशीर लश्करी के जनाजे की तस्वीर है ये और हजारों लोग इसमें शामिल हुए हैं, शनिवार को मुठभेड़ में उनकी मौत हो गई थी।
बहुत बहुत शुक्रिया हरिता कांडपाल। और कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं कि वुसतुल्ला खां आज किस विषय पर अपनी बात रखने जा रहे हैं।
बैल के बारे में कहते हैं कि उससे अगर अपनी मर्जी मनवाना हो तो उल्टा चैलेंज दे दो, यानी अगर बैल को आगे बढ़ाना हो तो पीछे से दुम खींचो और पीछे ले जाना हो तो आगे से सींग पकड़ के खींचो, आपका काम भी हो जाएगा और बैल भी ये सोच के खुश रहेगा कि देखो मैंने अपनी मर्जी चलाई, मालिक आखिर खुद को समझता क्या है। छोटे बच्चों को खाना खिलाने के लिए दुनिया की हर माँ ये टेक्निक इस्तेमाल करती है कि उसके सामने खुद खाना शुरू कर देती है और गोल गोल मुंह बना के कहती जाती है इतनी अच्छी सब्जी है कि मैं सब खुद खा जाऊंगी और चिंटू को तो बिल्कुल एक निवाला भी नहीं दूंगी। चिंटू साहब इस चैलेंज पे दौड़े दौड़े आते हैं और अम्मा के हाथ से खाना छीन के जल्दी जल्दी हपा हप करके अम्मा को ऐसे देखते हैं जैसे लंका फतह कर ली हो और अम्मा भी हंसते हुए अपनी हार पे तालियां बजा देती है। यही टेक्निक अच्छे भले इंसानों पर भी इस्तेमाल होती है। मसलन हमारे गांव में फैजू पहलवान रहा करते थे, कुआं उनके घर के पास ही था। जब भी अम्मा हमें आदेश देती कि घर की टंकी में पानी भरो तो हम सब बच्चे एक एक बड़ा बर्तन कुएं तक ले जाते और ज़ोर ज़ोर से एक दूसरे को कहते ये कुआं इतना गहरा है कि इसमें से दुनिया का कोई आदमी भी लगातार 10 डोल पानी नहीं निकाल सकता, फैजू मामा भी नहीं। फैजू मामा थोड़ी देर तो अपनी कुटिया में बैठे सुनते रहते और फिर बेसब्रे होके बाहर निकल आते, अम्मा कौन कहता है कि फैजू कुएं में से पानी नहीं निकाल सकता, हम पहलवान रहे हैं पहलवान, लाओ इधर अपने बर्तन, 10 छोड़ 20 डोल पानी निकाल के दिखाते हैं अभी। और फिर फैजू पहलवान हम सब के बर्तन भर देते और हम उनकी धुरंधरी का लोहा मानते हुए बर्तन सरों पर रख के मुस्कुराते हुए लौट जाते। बहुत दिनों बाद फैजू पहलवान को अंदाज़ा हुआ कि बच्चे उन्हें कैसे बेवकूफ़ बना के अपना काम निकालते हैं, मगर तब तक बच्चे भी इतने बड़े हो गए थे कि कुएं से खुद पानी खींच लें। ये सब हमें मनोहर पारेकर जी का इंटरव्यू पढ़ के याद आ रहा है, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स का प्लान एक पत्रकार को नीचा दिखाने के लिए बनाया था, जिसने उन्हें चैलेंज किया था कि बर्मा में घुस के तो आपने सर्जिकल स्ट्राइक्स कर दी, पाकिस्तानी सीमा के पार करके दिखाएं तो जाने। शुक्र है इस पत्रकार ने मनोहर जी को ये चैलेंज नहीं दिया कि एटम बम तो आपने बना लिया, अब उसे किसी के सर पे गिरा के दिखाएं, तब मानेंगे कि एटम बम असली है। जब से भारत में मोदी जी और अमेरिका में ट्रंप जी आए हैं, हमारी तो बोरियत ही दूर हो गई है। वो अपनी टीम में ऐसे ऐसे लोग लाए हैं कि पूछो मत। अब ये दुनिया अगर किसी दिन तबाह हुई तो अक्ल से नहीं, गुस्से से और एटम बम से नहीं, ट्विटर से होगी। बस चैलेंज ही तो करना है इस दुनिया के फैजू पहलवानों को।
वसतुल्लाह खां की डायरी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर लिखिएगा।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा। नमस्कार भारत। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 95 रनों से हरा दिया है। डर्बी में खेले गए मैच में भारत के 169 रनों के जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 74 रन बना सकी। बाएं हाथ की स्पिनर एकता बिष्ट ने पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को सस्ते में चलता कर दिया। 26 रन पर ही पाकिस्तान के 6 विकेट गिर चुके थे। एकता बिष्ट ने 10 ओवर में 18 रन देकर 5 विकेट लिए। इन 10 ओवरों में एकता ने 2 मेडन ओवर फेंके। पाकिस्तान की ओर से सना मीर ने 73 गेंद पर 29 रन बनाए और ये पाकिस्तान की ओर से सबसे बड़ा निजी स्कोर था। बीबीसी उर्दू सेवा की संवाददाता इरम अब्बासी इस मैच को देख रही थी। भारत की इस शानदार जीत के बाद उन्होंने बात की भारतीय कप्तान मिताली राज से।
मिताली, इतने कम टारगेट के बाद भी आपके बॉलर्स ने इतना जबरदस्त खेला और मैच जीता, तो कैसा लग रहा है?
जब 170 रन हमने स्कोर किए हैं तो मुझे लगा कि ये मैच किसी का भी हो सकता है, क्योंकि हमें सिर्फ अर्ली 3-4 विकेट्स चाहिए इनिशियली, ताकि हमको वो मौका मिले कि हम लोग इनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कम से कम टारगेट पे, क्योंकि विकेट जो है जब हम बैटिंग कर रहे थे तभी बहुत स्लो हो रही थी। लेटर ऑन तो चांसेस था कि वो स्पिन होगा, और जितना हमारे स्पिनर्स को टर्न मिला है वो बहुत ही डिफिकल्ट हो गया के बैट्समैन को नेगोशिएट करने में।
इतना ज्यादा क्राउड जिस मैच को देखने आया है और इतने जबरदस्त नारे लग रहे थे इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, तो आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस था?
मैंने पहले भी इंडिया पाकिस्तान मैचेस खेले हैं काफ़ी, उस वक्त भी काफ़ी लोग आए हैं वुमेन्स क्रिकेट देखने के लिए, एशिया कप में भी लोग आए, बैंकॉक जैसे सिटी में भी लोग आए हमारे मैचेस देखने के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे मैचेस से हम लोग वुमेन्स क्रिकेट को और पॉपुलर कर सकते हैं हर जगह पे। लोगों के मन में भी वुमेन्स क्रिकेट देखने के लिए क्यूरियोसिटी होगी, इंडिया पाकिस्तान मैच हो, ये प्लेयर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है कि लोग हमें खेलते हुए देखें।
भारतीय कप्तान मिताली राज से बात कर रही थी बीबीसी उर्दू सेवा की संवाददाता इरम अब्बासी। उधर भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही 5 वनडे मैचों की श्रृंखला के 4वें वनडे मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 11 रनों से हरा दिया। भारत की टीम 49 ओवर 4 गेंदों में 9 विकेट के नुकसान पर 178 रन ही बना सकी। विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था और भारत को वेस्टइंडीज ने 9 विकेट खोकर 189 रनों का लक्ष्य दिया था, माफ कीजिएगा 190 में से 1 रन कम का लक्ष्य दिया था। तो ये तो थी बात क्रिकेट की, बाकी खेल की खबरें खेल और खिलाड़ी में।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। इस अंक में शामिल है, आज से शुरू होगा विंबलडन का जादू, और समीक्षा भारतीय हॉकी टीम के गिरते स्तर की, और बात होगी बैडमिंटन की भी। कार्यक्रम की शुरुआत विंबलडन से।
Again, it's a lot of work for Murray.
टेनिस के कोर्ट पर सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाने वाले विंबलडन की शुरुआत आज से हो रही है, जहां पहले ही दिन शीर्ष वरीयता हासिल और पिछले चैंपियन ब्रिटेन के एंडी मरे अपना खिताब बचाने का अभियान कजाकिस्तान के बुबलिक के खिलाफ शुरू करेंगे। आज ही पुरुष एकल वर्ग में आठवीं वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिंका, चौथी वरीयता हासिल स्पेन के राफेल नडाल, सातवीं वरीयता हासिल क्रोएशिया के मारिन चिलिच और बारहवीं वरीयता हासिल फ्रांस के जो विल्फ्रेंड सोंगा भी अपना दमखम दिखाएंगे। जबकि महिला एकल वर्ग में दूसरी वरीयता हासिल रोमानिया की सिमोना हालेप, छठी वरीयता हासिल ब्रिटेन की योहाना कोंटा, ग्यारहवीं वरीयता हासिल चेक गणराज्य की पेत्रा क्विटोवा और तेरहवीं वरीयता हासिल लातविया की येलेना ऑस्टापेंको भी अपने अभियान का आगाज करेंगी। तो कुल मिलाकर पहले ही दिन टेनिस की दुनिया के धुरंधर महिला और पुरुष एकल खिलाड़ी विंबलडन में उतरेंगे, लेकिन कौन बनेगा चैंपियन इसकी भविष्यवाणी अभी करने से बचते हैं भारत के पूर्व डेविस कप खिलाड़ी और कोच अख्तर अली।
विंबलडन में पहला हफ्ता होता है वो डेंजरस होता है, क्योंकि बहुत से प्लेयर को आपने देखा नहीं खेलते और ग्रास कोर्ट में मैचेस होते हैं, बेस्ट ऑफ फाइव सेट है, डिफरेंट सरफेस है, डिफरेंट मूवमेंट है, तो ये फर्स्ट वीक जो होता है वो बड़ा डेंजरस होता है।
तो पहले उलटफेर से बचें और फिर चैंपियन बनने की सोचें। और अब समीक्षा हॉकी में भारत की गिरती स्थिति की। पिछले दिनों वर्ल्ड हॉकी लीग सेमीफाइनल्स में भारत ने पाकिस्तान को पहले तो ग्रुप मैच में और उसके बाद पांचवें से आठवें स्थान के लिए हुए मुकाबले में हराया। बस इसके बाद भारतीय हॉकी की किसी ने सुध नहीं ली। दुनिया में फिलहाल छठी रैंकिंग की टीम वर्ल्ड हॉकी लीग सेमीफाइनल्स में भी छठे स्थान पर रही। ये सुनने में भले ही अच्छा लगे, लेकिन हद तो ये हुई, ग्यारहवीं रैंकिंग की टीम कनाडा पांचवें पायदान पर रही और दुनिया में 14वें पायदान की टीम मलेशिया चौथे पायदान पर रही और उन्होंने शान से अगले साल होने वाले विश्व कप में भी अपनी जगह पक्की कर ली। और यही वो दोनों टीमें हैं जिन्होंने भारत को इस टूर्नामेंट में मात भी दी। मलेशिया तो चलो फिर भी कभी कभार उलटफेर कर ही देता है, लेकिन कनाडा जैसी टीम से हारना वाकई बेहद चिंताजनक है। कनाडा के खिलाफ भारत का खेल कितना दयनीय रहा इसका खुद गवाह बने लंदन में ही मुकाबलों के दौरान मौजूद रहे खेल पत्रकार वी कृष्णा स्वामी।
भारतीय टीम की हार जो थी कनाडा के हाथ 3-2 से काफी चौंका देने वाला रिजल्ट था। हालांकि कुछ ही दिन पहले मलेशिया के सामने भी एक हार का मुंह देखना पड़ा था, तो पिछले कुछ दिनों से ये लग रहा है कि भारत की जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट नहीं रही। कुछ दिन वो अच्छी तरीके से गोल दागते रहे अपनी राइवल टीम पर, मगर कनाडा के विरुद्ध जो है भारत ने कम से कम 20 या 25 चांस क्रिएट किए, जिनमें से 10 पेनल्टी कॉर्नर थे, मगर सिर्फ 2 ही गोल कर पाई।
अब ऐसा भी नहीं है कि भारत ने अगले साल होने वाले विश्व कप में जगह नहीं बनाई है, लेकिन सिर्फ जगह बनाने और एक दो मैच जीतने से क्या टीम की छवि बदल जाएगी? कुछ ऐसा ही हाल भारतीय महिला हॉकी टीम का है जो बीते शनिवार को लंदन के लिए रवाना हो गई, जहां उसे भी महिला विश्व हॉकी लीग सेमीफाइनल्स के मुकाबलों में अपनी परीक्षा देनी है। वो ग्रुप बी में दक्षिण अफ्रीका, चिली, अमरीका और अर्जेंटीना के साथ है। इससे पहले महिला टीम ने न्यूजीलैंड का दौरा किया, जहां वो 5 मैच हारी। पहले मैच में वो 4-1 से तो दूसरे मैच में तो 8-2 के अंतर से। पिछले कुछ सालों में भारत ने जितने टूर्नामेंट की मेजबानी की है, अगर उनमें से कुछ जीते भी होते तो आज भारत का डंका हॉकी में बज रहा होता। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल तो भारतीय हॉकी की गाड़ी पटरी से उतरी हुई है। और चलते चलते आपको बता दें कि चीन ताइपे बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब कल शीर्ष वरीयता हासिल चीन ताइपे के तियेन चेन चौ ने और महिला एकल वर्ग का खिताब जापान की साएना कावाकामी ने अपने नाम किया। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
और कार्यक्रम में इससे पहले कि आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। कतर आज देगा सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों की मांगों का जवाब। चीन ने अमेरिका पर साउथ चाइना सी में उकसाने वाली कार्रवाई करने का आरोप लगाया। सीरिया की राजधानी दमिश्क में कल एक आत्मघाती हमले में 19 लोगों की मौत हो गई है। फ्रांस के एविन्योन में एक मस्जिद के बाहर गोलीबारी में 8 लोग घायल हुए। इराक में विस्थापितों के एक कैंप पर आत्मघाती हमला हुआ है, जिसमें कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे शाकिर आलम। शाम को 7:30 बजे दिनभर कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें और bbchindi.com पर आते रहें, जहां लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।